ओम शांति। एक फरिश्ता ब्रह्मा बाबा ने जो ये फरिश्ता अवस्था को प्राप्त किया, पहला एक फरिश्ता, किस तरह से बाबा ने इस अवस्था को प्राप्त किया, क्या थी उनकी अंतिम स्थिति, आइए इस स्थिति के जो साक्षी व्यक्ति थे आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी हमारे बीच उपस्थित है, वो हमें इसी बात पर सुनाएंगे ब्रह्मा बाबा ने ये अंतिम फरिश्ता स्वरूप कैसे प्राप्त किया और हम किस विधि से ये प्राप्त कर सकते हैं। हम सबकी तरफ से मोहन भाई जी का सभा में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। 16 साल की उम्र में 1962 में आपने ये ज्ञान प्राप्त किया और 1967 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंड से मास्टर्स डिग्री लेकर आपने 28 साल तक ONGC में काम किया। उसके पश्चात जॉब से रिजाइन करके 1996 से आप मधुबन ईश्वरी यज्ञ में समर्पित हुए। साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के आप कोऑर्डिनेटर हैं और इस विंग की तरफ से आपने कई सारी रैलीज और कैंपेन्स का आयोजन भी किया हुआ है। तो आइए हम क्लास सुनेंगे मोहन सिंगल भाई जी।
ओम शांति। फरिश्ता, ये शब्द सुनते ही बुद्धि जैसे ऊपर में चली जाती है और बहुत सी मन में कल्पनाएं उभरने लगती हैं जो बाबा ने फरिश्तों के लिए बताई है। हम सबको बाबा ने लक्ष्य भी दिया है, फरिश्ता बनना है। अमृत वेले से उठकर ही क्या स्मृति रहे, मैं फरिश्ता। तो जो मन में बहुत कल्पनाएं उठती हैं, साथ ही साथ मन में ये भी कई बार आता है कि फरिश्ता तो कोई बहुत ऊंची चीज है और हम लोग तो मनुष्य हैं और किस प्रकार से ये फरिश्तों के लिए आदर होता है, सम्मान होता है। लेकिन हम भी फरिश्ता बन सकते हैं, ये मन में भाव बाबा ही आकर जगाता है। और संसार में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मनुष्य भी फरिश्ता बन सकता है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का, लेकिन विशेष सौभाग्य ये रहा कि जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया 18 जनवरी 1969, तो उस समय हम यहाँ मधुबन में ही थे और दो दिन तक पूरा 17 और 18 जनवरी को बाबा की वो कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का जो मौका मिला, वो आज आपके साथ हम यहाँ पर कुछ शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे लिए भी ये मंजिल बहुत सहज हो जाए जैसे बाबा के लिए हुई थी। तो हम सब जानते हैं बाबा को भी ये शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा बाबा को 1936 में, ये ज्ञान का परिचय हुआ और 1969 केवल 33 वर्ष में ही ब्रह्मा बाबा संपूर्ण रीति से अव्यक्त फरिश्ता बन गए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। और पुराने जितने भी पुराने सारे हिसाब किताब हैं, सब चुकतू करके बाबा कर्मातीत हो गए। तो देखो, ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी में तो हम सब ने पढ़ा है, बाबा भी घर गृहस्थी वाले थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, परिवार था पूरा और नौकरी धंधा सब कुछ। लेकिन जैसे ही बाबा को ईश्वरीय ज्ञान हुआ, लक्ष्य हुआ, बस बाबा को उसी की धुन लग गई। कि मुझे कर्मातीत बनना है। और बाबा को जब साक्षात्कार हुआ था, आप सबने सुना होगा कि बाबा को साक्षात्कार हुआ था, बस विनाश का साक्षात्कार हुआ बाबा को, प्राकृतिक आपदाओं का, इसके द्वारा विनाश, अणुशक्ति के द्वारा विनाश आदि आदि। और साथ में ये साक्षात्कार हुआ कि ऊपर से आकाश से सितारे सितारे आ रहे हैं, कोई राजकुमार बन रहा है और कोई राजकुमारी, नई सतयुगी दुनिया का। और फिर बाबा के कानों में आवाज सुनाई दी, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बस तभी से, पहले तो बाबा के मुख से निकला वो कौन था, किसकी आवाज थी, मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा, बहुत प्रश्न। लेकिन फिर तुरंत ही बाबा को ये धुन लग गई कि मुझे ऐसी दुनिया बनानी है, ये नई सतयुगी सृष्टि जिसका साक्षात्कार बाबा ने कराया था। तो इसीलिए बाबा इतने कम समय में घर गृहस्थी वाले होते हुए भी, धंधा करते भी, बाबा 33 वर्ष में ही संपूर्ण बन गया। आज हम सब लोग हैं, हमें ही लगभग 50 वर्ष हो गए, बहुत सब भाई बहन हैं, लेकिन बाबा इसीलिए बन गया कि बाबा को वो जो धुन लग गई, वो हमें सबको अपने अंदर झांक करके देखनी है कि क्या मुझे भी ये धुन लगी हुई है पूरी की पूरी, कि मुझे संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है और जितने भी पूर्व हमारे विकर्मों का बोझा है भस्म करना है। और उसी की तरकीब बाबा ने बताई है कि तीव्र पुरुषार्थी, जो बाबा ने परसों भी बोला, तीव्र पुरुषार्थी बनना है और बस मुझे फरिश्ता बनना है। और तीव्र पुरुषार्थी के लिए पिछले कुछ मुरलियों में जो बाबा ने बताया है, एक मुख्य बात वो क्या बताई है कि जो भी हो जाए फुल स्टॉप, एक बिंदी बस। तो एक तो ये हम अपने अंदर झांकते चले कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वातावरण की तरफ से कोई परीक्षा आती है तो क्या मैं तुरंत ही फुल स्टॉप लगा देती हूँ आत्मा, क्योंकि एक फुल स्टॉप, एक बिंदी पूरे सेंटेंस को खत्म कर देती है, स्टॉप कर देती है। और जब ये फुल स्टॉप नहीं लग पाता, फुल स्टॉप लगा, फिर संकल्प चालू हुए, फिर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर चालू हुए, फिर फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप तो सेंटेंस रोकने का प्रतीक है, और अनेक जो स्टॉप फुल स्टॉप है, अनेक बिंदियां, वो सेंटेंस की कंटिन्यूटी का प्रतीक है। तो अगर हम ये अपने अंदर एक तो ये झांकते चले, देखते चले, और बाबा को कई बार हम देखते थे, कोई काफी बातें हो जाती थी यज्ञ में, बच्चों की तरफ से बात आती थी, व्यक्तियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो बस बाबा ने सुना, अच्छा बस अजंग अभी इस चीज का शायद समय नहीं आया है, ये समय आएगा, ये कार्य हो जाएगा, तुरंत ही बाबा फुल स्टॉप लगा देते थे। तो एक तो ये था फरिश्ते स्वरूप, इतनी अवस्था को बाबा ने प्राप्त किया। दूसरी बात जो शुरू से ही हम सब ने सुना है, बाबा के यज्ञ में भी दो डायरियां रखी हैं, एक डायरी में बस बाबा ने ये लिख के पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, जो बाबा के लड़का लड़की, और युगल का नाम जसोदा था, जो पक्का किया। तो उससे फायदा क्या हुआ कि बाबा को जब ये पाठ पक्का हो गया तो बाबा जिसको भी दृष्टि देता था, हम लोग जब भी आते थे मधुबन में या बाबा कहीं बाहर जाते थे, बाबा मिलते थे, यूं हाथ बढ़ा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस बाबा का हाथ जैसे ही होता था हम सब चुंबक की तरह जैसे खींच के चले आते थे। एक एक इतना बाबा का प्योरिटी का वाइब्रेशन, इतना आत्मिक भाव, इतना स्नेह वो खींच लेता था। तो एक दूसरा हम ये चेक करते चले, क्या मैंने भी ये पाठ पक्का किया है कि मैं आत्मा हूँ, जहाँ भी व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है, कहाँ जाती है, पति में, पत्नी में, बच्चों में, व्यक्तियों में, संबंधों में। तो बाबा ने इतना पक्का कर लिया था कि जिनको भी बाबा देखता था, हम लोग बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा जरा सा यूं दृष्टि दी और हम तुरंत विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। अब बाबा से मिलते थे, फिर बस कुछ मिनटों के बाद बाबा ऐसे थपथपाता था जैसे हमें देह में लाता था, फिर विदेही हो जाते थे। तो इतनी शक्ति आत्मा में आ जाती है कि किसी को भी वो भले थोड़े समय के लिए भी विदेही अशरीरी कर देते। फिर बाबा ऐसे थपथपा के फिर हाल चाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, फिर एक जाता था, दूसरा आता था, वो जाता था, तीसरा, इस तरह सब मिलते थे। तो हम भी ये अपने को चेक करें कि क्या मैंने आत्मिक पाठ इतना पक्का किया है कि हम जिसको भी दृष्टि देते हैं, जिसको भी देखते हैं, हमारे शरीर से ऐसे वाइब्रेशन ऑरा हमारा ऐसा है कि किसी को भी भले थोड़े समय के लिए हम अशरीरी करते हैं। ये बाबा में विशेष देखा। तीसरी बात क्या देखी बाबा में कि बस बाबा के सम्मुख जब भी जाते थे, पहले हम लोग जब मिलते थे 1962-63 में, जब से ज्ञान में आए, बाबा सुनता था जो समाचार, सेवा समाचार, और उसका बाबा हल देता था, हाँ बच्चे ये करो, ऐसे सेवा करो, ये भाषण करो, इस टॉपिक पर करो, मंदिरों में जाओ, तीर्थों पे जाओ, नदियों के किनारे बैठ के चित्र खोल के, ऐसे ऐसे डिटेल में बाबा दिल लेता था। लेकिन जैसे जैसे बाबा संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा था, जब हम 1967 के बाद मिले, 68 में हमने देखा, 69 में, और खास करके 17 और 18 जनवरी को जब देखा, तो बस बाबा के पास हम गए लगभग 7-8 बार। 17 और 18 जनवरी को हमारा मिलने का सौभाग्य हुआ, क्योंकि और कोई पार्टियां नहीं थी, बाबा के साथ साथ रहना होता था। तो बस बाबा को हम सोचते थे ये जाकर बोलेंगे, ये सुनाएंगे, बस बाबा देखता था और हम थोड़ा सुनाना शुरू ही करते थे, एक दो लाइन ही बोली, बाबा कहता बच्चे बस बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने शुरू ही किया है कि नहीं, नहीं बच्चे बाबा समझ गया। और इस तरीके से तो बाबा धीरे धीरे समेटता जा रहा था, इतना सारा कार्य व्यवहार समेट करके थोड़े में सुना और थोड़े में उत्तर दिया। और पहले बाबा 15-15-20-20 मिनट भी एक एक से मिला करता था, बात करता था, सब कुछ, बाद में तो बस एक मिनट आधा मिनट, भले पूरी पार्टी होती थी, काफी देर तक हाँ पूरी पार्टी के साथ मिलता था, सबको भाषण देते थे बाबा, लेकिन इंडिविजुअल को बस जरा सुना और तुरंत उसका समाधान दे। तो हम भी अपने को ये चेक करते चले कि हमारा भी जो भी कार्य व्यवहार है, क्या हम उसको समेटते जा रहे हैं, क्योंकि अगर जो गायन है अंत मते सो गति का, अगर हमने बुद्धि से समेटा नहीं होगा, तो अंत में जब हमारे प्राण तन से निकलेंगे, जब कर्मातीत अवस्था निकट होगी जाएंगे, कोई भी बात कहीं पर भी अगर बुद्धि अटक गई, तो कर्मातीत संपूर्ण अवस्था नहीं हुई, अंत मते सो गते, वहां जाके हिसाब किताब चुकतु करने के लिए फिर पैसा पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी से ही हम बुद्धि को समेटते जाएं, यानी कि कार्य व्यवहार ना करें, जो भी निमित्त सेवाएं मिली हैं वो जरूर करें, लौकिक हो अलौकिक हो, लेकिन बुद्धि उसमें फंसी हुई ना हो, जिस समय हम चाहें डिटैच कर लें, जिस समय चाहें कार्य किया और आए। चौथी बात बाबा में देखी है, बाबा से जब पार्टियां मिलने जाती थी, उन दो दिनों में कई बार बाबा से मिलना हुआ, देखते थे। अब जब टीचर भी पार्टी को ले जाती थी, बाबा तीन जगह अक्सर कहीं मिला करते थे, जैसे पार्टी अगर एक दो, कभी बाबा अपने कमरे में या झोपड़ी में या हिस्ट्री हॉल में, ये तीन जगह अक्सर करके बाबा मिलते थे। तो बस बाबा जैसे बैठे हैं, पार्टी गई, टीचर देखा, आंख भी खुली है बाबा की, और बस बाबा जैसे अपने में मग्न है। और टीचर जाके बोलते थे, बाबा बाबा, तो बाबा को जैसे एकदम जैसे जर्क सा लगता था कई बार। है बच्ची, अच्छा आ गई हो, पार्टी लाए हो, अच्छा आओ आओ बैठो। तो देह में यहाँ, देह यहाँ है, लेकिन बुद्धि से बाबा जैसे, जो बाबा ने अपने पांच स्वरूपों के चिंतन का कहा है, कभी कहीं सूक्ष्म वतन, परम धाम, कभी नई दुनिया, कोई भी। तो बाबा को ये अभ्यास इतना पक्का हो गया था कि एक सेकंड में आना देह में, कार्य व्यवहार करना, पार्टियों से मिलना, जो भी पूछते हैं उनका उत्तर देना, उसके बाद जैसे ही बाबा फ्री होते थे तुरंत देह से न्यारे हो जाते थे। जो बाबा हम बच्चों को कहता है, ये अभ्यास जिसका जितना पक्का होगा, फास्ट होगा। कल भी जो अव्यक्त मुरली चली ना, उसमें भी बाबा ने यही कहा कि अशरीर बनने का, देह से न्यारे होने का जिसका अभ्यास वो होगा, वो ही अंत समय में लास्ट सो फास्ट जा सकेगा, फास्ट नंबर ले सकेगा। तो ये बाबा का प्रैक्टिकल में देखा ऐसा अभ्यास था। बस आए, पाठ बजाया, जो भी है, उसके बाद फिर बाबा न्यारे हो जाते थे और फिर जैसे अपने पुरुषार्थ में तल्लीन हो जाते थे। देखिए बात बाबा के, देखिए। और सबसे बड़ी विचित्र बात और क्या देखी, जब बाबा से मिलते थे, कई बार हम सोचते थे बाबा से ये बात पूछेंगे, क्योंकि लौकिक पढ़ाई इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आसाम में पोस्टिंग थी उस समय, और वहाँ पर हम आसाम में शिव सागर और उधर गुवाहाटी और तिनसुकिया वो साइड में पूरा हमारा पोस्टिंग था। 1967 में पास किया था और तब उसके बाद से वहीं थे। और बस बाबा ने जैसे बुला लिया 69 जनवरी में, और बाबा के पास आ गए। तो बाबा से हम ये पूछेंगे, वहाँ पर कोई टीचर तो थी नहीं, कोई सेंटर भी नहीं था उस समय, लेकिन बाबा की कमाल थी कि बाबा ने बस इतना थोड़े समय में ही सेवा का बहुत विस्तार कर दिया। तो बाबा से हम जाके ये पूछेंगे ऐसी बात होती थी। बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने जरा दृष्टि दी, मन के भाव को परख लेना तुरंत। बाबा, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब एक शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं होती थी। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, जब 6-7 बार ऐसा 2 दिन के अंदर हुआ तो बड़ा ही आश्चर्य होता था। हम ये पूछने गए और बाबा ने बस तुरंत ही मन का भाव परख करके बस बता दिया कि ये पूछने आए हो, अच्छा बच्चे ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब मन में जो प्रश्न वो भी और साथ में उसका समाधान भी। बड़ा आश्चर्य। तो दीदी मनमोहनी जी हुआ करते थे, तो बाद में जब दीदी मनमोहनी जी से मिले तो हम कई बार आपस में चर्चा करते थे, दीदी ये कैसे हुआ, बाबा मन के भावों को जान जाता था। अपने कई हमारे एक्सपीरियंस ऐसे थे और बहुतों के ऐसे एक्सपीरियंस होते थे। तो दीदी ने बड़ा अच्छा बताया कि देखो, जब जो व्यक्ति मन जीते जगत जीत हो, मन जीते है, जिसने अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त कर ली, मन को जीत लिया, वो तुरंत ही दूसरे के मन के भावों को परख सकता है और उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। और इसीलिए बाबा पिछले कुछ 2-3 सालों से और हर मुरली में विशेष ये बोलता है, क्या, मन जीते जगत जीत। मन के लिए कहा गया हमारी भारतीय संस्कृति में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी कहा है, मन मना भाव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो अभी भी बाबा ने कहा, जैसे हम तन का, भोजन का अपने ऊपर इतना कंट्रोल शुरू से ही हो जाता है, मेजोरिटी बच्चों में यह है, ऐसे ही तन का भोजन तो फिर भी हम दिन में 2-3-4 बार कुछ करते हैं, लेकिन मन का भोजन तो एक एक सेकंड में हमारा मन का चलता रहता है। वही बाबा चाहता है, जैसे तन पर कर लिया तन के भोजन का, ऐसे मन पर। और उसका प्रैक्टिकल उदाहरण साकार ब्रह्मा बाबा थे, जो मैंने आपको बताया कि बस बाबा के सम्मुख गए, थोड़ा बाबा ने दृष्टि दी। और ये बहुत आवश्यक है, क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है कि ऐसा समय आएगा अंत समय जब बहुत सब तरफ त्राही त्राही भी मची होगी, जो बाबा ने कहा है समय बहुत नाजुक आने वाला है, दुख अशांति होगी चारों तरफ, लोग हमारी तरफ बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आशा से, बड़े विश्वास की नजरों से देखेंगे, आएंगे कि यहाँ पर बहुत शांति मिलती है। सुना हुआ होगा उन्होंने यहाँ साक्षात्कार होते हैं, अनेक भाव लेकर के आएंगे। उस समय न तो उन्हें बोलने का समय होगा, न हमें सुनने का समय होगा। एक ही साथ हजारों लोग जब आएंगे, और कोई दुर्गा की साक्षात्कार की इच्छा लेके आया, कोई राम की, कोई कृष्ण की, कोई हनुमान की, कोई काली की, सबके जिसका जो इष्ट देव है उसकी इच्छा लेकर आएगा, हमारे सम्मुख आएगा। अब साक्षात्कार की चाबी तो एक शिव बाबा के पास ही है, ब्रह्मा बाबा भी कहता था मेरे पास भी नहीं है, तो बाबा लेकिन हमारे तन का आधार लेके, यानी हमारे तन के द्वारा उन आत्माओं को उनके इष्ट देव का साक्षात्कार कराएगा, जिसमें उनकी श्रद्धा होगी। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में भी पढ़ा है ना कि शुरू में अब ब्रह्मा बाबा तो थी कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा, सारे बच्चों को जो भी सबको साक्षात्कार होता था बाबा से, कृष्ण का, नारायण का, स्वर्ग का, सब रास करते थे, खेलकूद करते थे, क्योंकि कृष्ण की आत्मा थी। लेकिन हम लोगों ने जीवन कहानी में भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, एक बार एक सरदार जी आए, वो थोड़ा विरोधी थे, वो ज्ञान नहीं मानते थे, और ये संकल्प लेके आए थे मुझे बाबा को आज मारना है, छुरा लेकर के आए थे। लेकिन बाबा के सम्मुख गए, बहन उनको ले गई, बाबा के पास बैठा दिया, और जब वो अकेले थे, बहन तो चली गई अपने कार्य में लग गई, जब वो अकेले थे तो उसने छुरा निकाला बाबा को नुकसान करने के लिए, मारने के लिए। तो क्या हुआ, उसको साक्षात्कार हुआ गुरु नानक देव जी का। बाबा थी तो कृष्ण की आत्मा, लेकिन साक्षात्कार कराने वाला तो शिव बाबा है, और उन सरदार जी की भावना गुरु नानक देव जी में थी। तो बस जैसे उसे गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ बाबा से, तो बस वो तो आश्चर्यचकित रह गया, आंखों से उसके अश्रु धारा बहने लगी, पश्चाताप होने लगा एकदम, अरे गुरुजी मैं क्या करने जा रहा था, मैं आपको ही मारने जा रहा था, आपकी हत्या कर रहा था, कितना पापी हूँ, आंखों से आंसू धारा बहने लगी। छुरा उसने नीचे रखा, बाबा से क्षमा याचना करी, बस वो तो गुरु नानक देव ही देखता रहा बाबा को, क्योंकि उसकी श्रद्धा गुरु नानक देव में थी। तो ये ही सारे पार्ट हम सबके द्वारा ही चलने हैं अंत में, लेकिन कब चलेंगे ये, जब हम हमारा तन वो पवित्र होगा और मन पवित्र, तन मन के द्वारा बाबा हमारे द्वारा आने वाली आत्माओं को उनके इष्ट देव का साक्षात्कार करा के उनकी इच्छा जब पूर्ण होगी, वो ही आत्माएं संतुष्ट होके जाएंगी, जो बाबा ने भी कहा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। इतनी हजारों आत्माओं को हम कैसे संतुष्ट करेंगे, दुनिया की तो लाखों आत्माएं अंत में सब आएंगी, 33 करोड़ देवता तैयार होने हैं त्रेता के अंत तक के, भाषण करने का समय नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो आएंगी, बाबा हमारे द्वारा उनको उनके इष्ट देव का साक्षात्कार करा के उनको तृप्ति का अनुभव कराएगा, और बस उनके मुंह से बरबस निकलेगा निकलेगा, हे प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, शायद यहीं से ही वो निकलेगा बाद में त्रेता के अंत में भगवान सर्वव्यापी का सिद्धांत। लेकिन हम एक एक बच्चे से ये पार्ट चलना है, लेकिन कब चलेगा, जब यहीं पर हम हल्के होंगे, फरिश्ते स्वरूप बनेंगे, और फरिश्ते की बात आते ही मन में वो कल्पना साकार हो जाती है, बड़ा फरिश्ता जिसके धरती पर पाँव नहीं, उड़ता हुआ, पंख लगे हुए, श्वेत वस्त्रधारी, बड़ी दिव्यता चेहरे से झलकती हुई, ये फरिश्तेपन का जैसे कल्पना मन के अंदर आ जाती है। तो ये ऐसा वास्तव में जितना जितना हम बनते रहेंगे, डबल लाइट का भी बाबा ने बताया, हम हल्के भी रहे, साथ ही साथ लोगों को साक्षात्कार तो हमारे स्तन के द्वारा ही होगा ना। बस जैसी देखेंगे हमारे तन के द्वारा साक्षात्कार होगा और वो आत्माएं बहुत संतुष्टि का अनुभव करेंगी। तो बाबा का ये देखा हमने प्रैक्टिकल में, 18 जनवरी की रात्रि क्लास, हिस्ट्री हॉल आप सबने देखा होगा, वहाँ 3 संधियां पड़ी रहती हैं। अभी भी एक पर बाबा बैठते थे, एक पे मम्मा बैठते थे और बीच में एक संधि होती थी, वो बच्चों के लिए होती थी जो पार्टी में आते थे, पार्टी वाले आकर के अपना अनुभव सुनाते थे, हम ये लक्ष्य लेकर के जा रहे हैं, ये पुरुषार्थ करेंगे। तब तो साकार में बाबा मम्मा के बीच में हम लोग बैठा करते थे और बाबा पूरा सारा सुन करके और भी डायरेक्शन देते थे। तो बाबा का ये विशेष देखने को मिला, 18 जनवरी को तात्री क्लास बाबा क्लास करा रहे थे, सामने कुछ भाई बहन मधुबन निवासी और बाहर के तो केवल हम 2-3 लोग ही आए हुए थे, बैठे हुए थे उस समय। देखो ध्यान देने की बात है, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है तो कैसे मन जीते जगत जीत बन जाती है। बस हमारे मन में बैठे ही बैठे संकल्प आया एक, हाँ अभी भी जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना, हम सब मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छा टोली भी सबको मिल जाती है बैठे बैठे अपने स्थान पर, फिर भी मन में कहीं ये भाव होता है अरे क्या ही अच्छा हो अगर हमें भी स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, बाबा से दृष्टि मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, संकल्प होते है ना। तो हम भी सामने बैठे हुए थे, हमारे मन में एक संकल्प आया, आपके सामने बता रहे हैं कि बस बाबा कुछ हमारे लिए, हमारे व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए कुछ बोले। बाबा तो वैसे मुरली चलाता है, सबके लिए बात आ ही जाती है सदा, लेकिन बाबा कुछ नाम लेके बोले। पर जैसे ही मन में संकल्प आया, और वो तो कर्मातीत अवस्था थी, मन जीते जगत जीत की स्थिति वाली आत्मा, अपना संकल्प, जिसके अपना संकल्प नहीं होगा, अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, वो इच्छा मात्रम अविद्या, वही आत्मा दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। अब बाबा अपनी इच्छाओं को जीत करके संपूर्ण बन चुका था, बस अंतिम दिन की बात है, शरीर छोड़ने से 1.5 घंटा पहले की, और जैसे ही मन में ये संकल्प आया तुरंत बाबा तक पहुंचा होगा। अब बाबा ने तुरंत ही नाम लेके ही ना उस 18 जनवरी की मुरली में ही हमारे लिए जो मन में संकल्प आया बाबा ने वो महावाक्य उच्चार करके हमारे भी मन की इच्छा को पूर्ण कर दिया। तो ये है संपूर्ण आत्माओं के लक्षण कि हमारे जो भी भक्त आत्माएं आएंगी, जो आत्माएं दीदार के लिए साक्षात्कार के लिए मन में इच्छाएं लेकर आएंगी, हम उनकी इच्छाओं को बस तथास्तु जैसे भक्ति मार्ग में हमारा गायन है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। हमने तो ये प्रैक्टिकल में देखा, और मतलब जनवरी मास में 1969। तो हम लोगों को भी बस अब एक स्थिति को भी प्राप्त करना है। और बाबा का क्या देखा, देखो फरिश्ता होता है ना लाइट स्वरूप, और बाबा 18 जनवरी को ये अव्यक्त होके बस थोड़ी देर के बाद जस्ट बाबा उठे, उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। बाबा को देखो इतनी परिस्थितियां होती थी, लेकिन बाबा हमेशा इतने खुश मिजाज, सदा संतुष्ट। कई बार बाबा को खांसी आती थी और बस बाबा हंसी में कहते थे, मैं शिव बाबा को बोलता हूँ कि बाबा आपने इस तन का आधार लिया है, मेरी खांसी तो दूर करो, मुझे मेरी सखी से। बाबा कहता था, मालूम है बच्चे मेरी सबसे प्रिय सखी कौन सी है, कौन है, खांसी। क्योंकि वो बाबा का साथ नहीं, बीच बीच में कई बार बाबा को खांसी आती थी, तो बाबा कहता ये मेरी सखी है, तो मैं शिव बाबा को हंसी में कहता हूँ कि बाबा मेरे इस खांसी सखी से तो मेरा प्रिंट छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या कहता था, शिव बाबा कहता था, बच्चे ये तो तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब है, ये तुम्हें चुकतु ही करना ही है, हरेक के कर्मों का हिसाब उसे चुकतू करना है। मैं भले तुम्हारे तन का आधार लेके कार्य करता हूँ, मुरली सुनाता हूँ, उसका तो मैं एवजा दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों का जो हिसाब किताब है उसको मैं वाइप आउट नहीं कर सकता, चुकतू नहीं, वो तुम्हें चुकतू करना है। तो जब ब्रह्मा बाबा को भी कोई कंसेशन नहीं, तो मुझे आपको कोई कंसेशन होगा कर्मों के हिसाब किताब में? तो बस हंस के करें, मुस्कुराते हुए करें, कर्मों का शरीर का जो भी हिसाब, वो ही हमारे ब्राह्मण जीवन की ब्यूटी है। और बाबा को देखते थे, बस खांसी आती थी, कई बार आंख में पानी भी आ जाता था बाबा को, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा कहते, अरे बच्चे देखो कल बाबा जाके ये बनेगा। वहाँ हिस्ट्री हॉल में आप देखोगे ट्रांसलाइट का चित्र रखा है, श्री लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का। तो देखो बच्चे अभी बाबा को ये तन है, पुराना तन है, खांसी आती है, व्याधि होती है, रोग है, लेकिन कल जाके बाबा ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, देखो ऐसी नई दुनिया, कोई दुख नहीं होगा, बस बाबा के चेहरे पर वही खुशी खुशी और खुशी। तो बस ये एक पाठ पक्का हम सबको भी कर लेना है, तन की व्याधि हो, कोई मन का हो, कोई समय का, संबंध का, कोई भी बात हो, पेपर हो, लेकिन हमारी खुशी कायम ना हो, ये बाबा के चेहरे से सदा एकदम खुशी, कल बाबा जाके ये बनेगा। बच्चे खुशी में बच्चों को क्या करना चाहिए? खग्गियां मारनी चाहिए, बाबा कहा करता था। हाँ, खग्गी कैसे मारते मालूम है? बाबा ने करके दिखाया, वहाँ हम लोगों ने कहा कि बाबा मैं भी आपको दिखाता हूँ। बाबा बस इतनी खुशी हो बच्चे, खग्गियां मालूम है कैसे हो? बाबा हमें ये बना रहे हो, इतना खुशी हो जो एक एक अंग से झलके कि ये ऐसा खुशी। इतना बूढ़ा बाबा, 93 इयर्स की एज, लेकिन चेहरा सदा चमकता हुआ, क्यों? क्योंकि ये बाहर की खुशी नहीं, मन की खुशी होगी, वो तन से, संबंध से, व्यवहार से, नैन चैन से, हर चीज से वो खुशी रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो फरिश्ते आकर्षण मूरत होते हैं, खींचते हैं, क्योंकि उनके नैन चैन, उनका व्यवहार, बोल चाल, कोई भी चीज है वो सब जैसे प्योरिटी है, तो इसमें आकर्षण में चुंबकीय शक्ति होती है। तो ऐसा बाबा करता था, हमें भी अपने अंदर ये देखते चलना है। और बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, ये सब फरिश्तेपन के जो लक्षण प्रत्यक्ष देखने में आते हैं ना, तो हमारे लिए भी ये सहज हो जाएगा, हाँ हम भी कर सकते हैं, बन सकते हैं। हम लोग जब आए तो बाबा ने भी ना मन के, एक तो बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने मन के ऊपर ऑर्डर करके मन का पाठ पक्का किया। कैसे किया? एक पुराने हमारे भाई होते थे आनंद किशोर दादाजी, उन लोगों ने, उन्होंने हमें पुराने भाइयों को एक बाबा का हाथ का लिखा हुआ लेटर, वो तो सिंधी में था, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके दिया। मन को बाबा ने कैसे कंट्रोल किया 1936 में, बाबा अपने मन को लेटर लिख रहे हैं, गौर से सुनिएगा। हे मन, तूने मुझे अभी तक बहुत भटकाया, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मन मेरा मंत्री है, कर्मचारी है, मैं राजा हूँ, फिर भी तुमने मुझ आत्मा राजा को अपने वश में कर लिया और मैं राजा कमजोर हो गया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे बता देता हूँ कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बाबा ने ऑर्डर किया अपनी स्वस्थिति में, स्वमान में स्थित होकर मन को। इसी तरह बाबा बुद्धि को भी जैसे लेटर लिख रहे, बुद्धि को कहा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने, मन और बुद्धि ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को इतना शक्तिहीन बना दिया कि मैं भी तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। लेकिन अब हे बुद्धि, मैं तुझे भी कह देता हूँ कि अब मैं आत्मा राजा तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो बाबा ने ये ऑर्डर दिया स्वमान में स्थित होके, तो तुरंत ही बाबा मन जीते जगत जीत, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बस इस स्थिति में हम सब भी स्थित होना चाहते हैं, तो हमें भी मन को अपने सुमान की सीट पर स्थित होकर ऑर्डर करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग की तरह ये न कह दे क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम ये करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, गुस्सा तो नहीं करना चाहते लेकिन मन में आ गया, मुंह से ये शब्द निकल गए, ये कमजोरी के लक्षण है। और जब हम स्वस्थिति में स्थित होकर ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके से बलशाली बन जाते हैं। एक ये बाबा ने ये भी एक डायरी में कैसे मन से बात की जाती है वो यहाँ पर बाबा ने शुरू में उस समय से ही ये अभ्यास पक्का किया। और बाबा ने क्या अंत समय तक देखा, 18 जनवरी को ऐसी मुरली चलाई। और जब हम जितना कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि कर्म भोग, शरीर के कर्म भोग हैं, ये हमारा अंतिम पेपर है, बहुत बड़े से बड़ा पेपर है शरीर का पेपर, क्योंकि शरीर में ही आत्मा का निवास स्थान है, यहाँ रहते हैं। तो शरीर में व्याधि अगर बहुत ज्यादा होगी महसूस तो आत्मा को ही होगा, तो इसीलिए फिर वो उसका असर पुरुषार्थ पर भी पड़ता है। तो ये देखा जितना हम कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेगा। और शरीर की व्याधियां, व्याधि होगी, रोग होगा, कष्ट होगा, लेकिन उसकी महसूसता नहीं होगी आत्मा को। और आत्मा बिल्कुल अपने नशे में, यहां बड़ी दादी जी को भी देखते थे, दादी प्रकाशमणि जी को, बस दादी को हमेशा देखते थे, दादी के पास हम लोग जाते थे और डॉक्टर भी पूछते थे दादी आपको तो बड़ा तकलीफ हो रही होगी इसमें ये, दादी बस नॉर्मल स्वाभाविक, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही, नहीं दादी आपको तो इसमें तो ये तो ऐसी चीज है, इसमें तो कोई भी पेशेंट बहुत बहुत दर्द से व्याकुल हो जाता है, कि नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ मुझे बिल्कुल भी उसका नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना जो अशरीरी स्थिति में रहता है, शरीर में कुछ भी होता रहेगा उसका भान ही नहीं होगा, उसे डिटैच हो गया। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर हम एसी कमरे में है, डिटैच है ना वातावरण, तो बाहर चाहे जितना टेम्परेचर हो, बहुत गर्म भी हो, लेकिन चूंकि डिटैच हो गए हम बाहर के वातावरण से, अलग हो गए अंदर, तो हमें एसी के अंदर बड़ी सुख का, शांति का अनुभव होता है, बाहर का वातावरण प्रभाव नहीं डालता। ऐसे ये शरीर के ऊपर भी ना, अगर जितने भी कष्ट वो कुछ भी होंगी, व्याधि होंगी, वो मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर वो असर नहीं डालेंगी अगर हमें डिटैच होने का अभ्यास होगा। ये बाबा का प्रत्यक्ष देखते थे और इस रीति से ही बस बाबा अंतिम मुरली में आप देखो, उन दिनों हमने देखा 17-18 जनवरी को बहुत सर्दी थी, बाबा को भी शरीर इतना ठीक नहीं था, खांसी आती थी, लेकिन 18 जनवरी की मुरली आप सुनो, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी बाबा को गला साफ करने की जरूरत ऐसा करके बाबा को कई बार गला भी बीच बीच में साफ करना पड़ता था, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो आत्मा सारे हिसाब किताब चुक चुक कर चुकी थी और शरीर के कर्म भोगों के ऊपर भी योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। हम सबको भी विजय तो प्राप्त करनी है, इसलिए विजय अल्टीमेटली हमारी विजय निश्चित है, होनी ही है। कल पहले भी हम विजयी बने थे, अभी भी हम बन रहे हैं, बस ये मन में पक्का रहे बाबा मैं वही विजयी आत्मा हूँ, आपकी कलप पहले वाली माला का मणका हूँ, कलप पहले भी आपने बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो, कलप कलप आप ऐसे ही बनाते रहोगे, बाबा बहुत बहुत थैंक्स, वाह 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 वाह, जो बाबा कहते हैं ये हमारा अगर चिंतन पक्का रहेगा तो अंत समय में हम उस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने कहा कर्मातीत बने और तुरंत शरीर छोड़ दिया, उसका फायदा क्या हुआ? उस स्थिति का अभी अनुभव करना चाहिए कि कर्मातीत स्थिति, फरिश्ता स्वरूप स्थिति क्या है। और 18 जनवरी की मुरली में देखो, रात्रि क्लास आप सुनो, बस उसकी कैसेट मिलती है और ऊपर भी मिलती है, वो सुनेंगे, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, जो इस बात के प्रतीक है कि कर्म भोग के ऊपर योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है जब व्यक्ति की कर्मातीत अवस्था हो के निकट होता है वो। उसके बाद बाबा ये कह के उठे, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद किया, और बाबा ने देखा बस सब बच्चों को दृष्टि देने लगे। फिर बाबा थोड़ा गए, फिर खड़े हो गए, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे। थोड़ा दृष्टि दी और सामने दादी जी बैठे हुए थे, प्रकाशमणि दादी जी, उनके सम्मुख बाबा की दृष्टि बार बार ठहर जाती थी। फिर इस तरह बाबा, छोटा ही हॉल है, हिस्ट्री हॉल, गए और वहां पर बाबा ने बाहर बोला, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट। अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये शब्द बोल के, ये बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, लेकिन उस दिन बाबा के मुंह से, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये कह के बाबा बस गए। और अपने कमरे में जाके बाबा ने बस बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह दादी जी के हाथ में हाथ, और बाबा ने जैसे छुट्टी ली, विदाई ली। भीष्म पितामह का जैसे गायन है, इच्छा मृत्यु का वरदान, हम सबको भी यही वरदान है। बस आवश्यकता ये है हम उसको ठीक रीति से समझे और उस तरफ हमारे कदम बढ़ते चले। अब बाबा ने ये करके उसके बाद कमरे में गए, शरीर छोड़ दिया। लेकिन प्रकृति जीत बाबा का क्या देखा, कैसे बाबा ने 18 जनवरी की रात्रि को शरीर छोड़ा, 18 जनवरी की रात्रि भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद संस्कार किया गया। लेकिन बाबा ये प्रकृति से, 5 तत्वों से बने हुए शरीर को भी ना इतना पावन बाबा ने कर लिया था कि इतने लगभग 65-70 घंटे के बाद भी शरीर में कहीं भी कुछ परिवर्तन नहीं आया। यानी तो जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर स्टिफ अकड़ जाता है, हिला नहीं सकते कुछ घंटे के बाद ही। हम लोगों ने 18 के बाद 19, 20, 21 को जब दोपहर को स्नान करा के संस्कार के लिए ले गए, तो उसके बाद वहां पर देखा, वहां पर बिल्कुल बाबा का सारा शरीर में जैसे कोई भी स्टिफनेस नहीं, न कोई भी शरीर में कालापन आया, न कोई भी ऐसा नहीं, ऐसे ही लगता था बाबा जैसे सो रहा है और बस अभी उठ के बाबा कहेगा, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, ऐसा कह के बिल्कुल लगता था। ये है प्रकृति जीत का प्रतीक। इन 5 तत्वों को इसीलिए बाबा रोज कहता है, तत्वों को भी योगदान करो। तत्वों को अगर हम योगदान नहीं करेंगे तो अंत समय तक ये तत्व हमारा साथ कैसे देंगे। इसलिए रोज प्रकृति के इन 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन तत्वों को जितना हम योगदान करते रहेंगे तो बाबा की तरह हम भी फरिश्ते पथ की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और बस उसके बाद ये देखा कैसे हम इन तत्वों को योगदान कर सकते हैं। हर तत्व में अपने अपने विशेष गुण है, और जैसे आपको बताया ना, अंत मते सो गति का गायन है। तो अंत में हमारी स्थिति ऐसी हो जो ये प्रकृति के तत्व भी हमारा सहयोग करे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बाबा ने भी ये स्थिति को कैसे प्राप्त किया, और उसके बाद मैं समाप्त करता हूँ। तो ये जो बाबा का शरीर 5 तत्वों से बना, हम सबका शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है, तो ये जो शरीर ने अंत तक साथ दिया, चमकता रहा शरीर, कोई स्टिफनेस नहीं आई, किसी प्रकार का डिसइंटीग्रेशन बॉडी में नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बाबा ने तत्वों को भी अपना मित्र बना लिया था। ये 5 तत्व मित्र जो है, मित्र की समय पर सहायता करता है हमेशा, तो इन तत्वों को भी हम अपना मित्र बना रहे हैं, जिससे ये भले अंत में बहुत भूचाल आएगा, बहुत फ्लड आएगा, सुनामी होगी, साइक्लोन होंगे, तूफान, हवा चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर इन तत्वों को हमने अपना मित्र बनाया होगा तो ये तत्व कभी भी हमारे साथ धोखा नहीं देंगे, हमारा सहयोग करेंगे। कैसे इन्हें मित्र बनाए? इन तत्वों को मित्र बनाने का एक साधन, मित्रता किनके बीच में होती है? जिनके एक जैसे संस्कार होते हैं, संस्कार मिले हुए होते हैं। तो हमें भी अपने एक एक संस्कार को देखते जाना है इन तत्वों के साथ कि मेरा संस्कार उन जैसा है। वैसे तो बहुत है लेकिन केवल एक एक गुण हम ले। मानो जल तत्व है, अभी सुनामी आती है, कल भी जापान में एक अर्थक्वेक आया, कल बहुत अभी तो अंत में ये सब चीजों के प्राकृतिक आपदाओं के बाजार बहुत गर्म होने हैं जो बाबा ने कहा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है या जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? शीतलता तो है ही है लेकिन जल का सबसे बड़ा गुण है फ्लेक्सिबिलिटी। जल हर चीज में अपने को सेट कर लेता है। अभी जैसे जल ने इस गिलास में, बोले गिलास में लो गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो कटोरी में हो जाएगा, थाली में लो थाली में सेट हो जाएगा। ऐसे यदि मेरे भी संस्कार में, बाबा ने भी जो अभी परसों भी मुरली में बोला, हमारे जो निजी संस्कार है ना, पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों को हम किस प्रकार से बदले, यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो जल का गुण हर जगह सेट होना। ऐसे मुझे भी अपने संस्कार ऐसे बनाने हैं कि मैं हर आत्मा के साथ सेट हो सकूं। ऐसा नहीं कि इनके साथ तो सेट होना आसान है, इनके साथ बहुत मुश्किल है, नहीं मिलते संस्कार, नहीं। इतने फ्लेक्सिबल हो हरेक के साथ हमारे संस्कार जल की तरह अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा, जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। कितनी भी सुनामी आए, कितना फ्लड आए, लेकिन जल तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया, जल की तरह फ्लेक्सिबल हो गए, उसकी तरह शीतलता धारण कर ली, उसकी तरह सदा जल आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ने का लक्ष्य हमारा जीवन में सदा क्लियर रहेगा, तो कभी भी जल हमारे दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि जल तत्व को हमने मित्र बना लिया। इसी तरह पृथ्वी तत्व को मित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी का मूल सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सहन शक्ति तो है। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दाता का। पृथ्वी सदा देती है, एक बीज बो दो छोटा सा बीज, पूरा पेड़ निकल आएगा और हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, हजारों बीज के रूप में वो रिटर्न कर देती है, दाता है। ऐसे अगर हम भी सदा दाता बन के सबको देते रहे, हमारे सम्मुख जो आए खाली हाथ न जाए, सुख का शांति का प्रेम का आनंद का सहयोग का, जो बाबा ने कहा है सहयोग दो सबको, स्नेह दो प्यार दो, इसमें तो कुछ खर्चा होता नहीं। स्थूल चीजों में तो लिमिटेशन है, दे सकते हैं इतने तक दे सकते हैं, इसके बाद नहीं दे सकते, लेकिन प्रेम आनंद जो आत्मा के गुण है, सहयोग है, शक्तियां है, इन सब का जितना दान हम देते रहेंगे, पृथ्वी की तरह यदि हम दाता बन जाएंगे, पृथ्वी की तरह सहनशील बन जाएंगे, तो क्या होगा, जितने भी पृथ्वी हिलेगी, अर्थक्वेक होगा, भूचाल आएगा, चाहे पूरा दुनिया स्वाहा हो जाए, लेकिन हमारा नाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को हमने अपना मित्र बना लिया। अब मित्र कभी भी मित्र के प्राण नहीं ले सकता। बाबा का ये एक एक गुण बाबा के व्यवहार से, चेहरे से, चलन से प्रत्यक्ष होता था। इतना सहनशील, इतना दाता, जो भी जाता है, अभी भी हम दादियों को देखते हैं, बस जाते हैं, हमेशा दादियों के मुंह से महावाक्य ही सुनने को मिलते हैं। इस तरीके से हम भी ये हो जाए, कोई भी आए खाली हाथ न जाए, कोई भी ज्ञान की एक पॉइंट, योग की धारणा की, कुछ भी सेवा हर आत्मा को देते चले। ऐसे हवा का, वायु का क्या गुण होता है? हल्का, हर चीज को उड़ाती है, उड़ते चलो और उड़ाते चलो कहते हैं ना, इसी प्रकार से यही हम भी जीवन में सदा हल्के रहे, भारी ना हो कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, हमें भारी ना करते। इसी तरह आकाश का क्या गुण है? विशालता, महानता। बाबा कहते हैं इतना बड़े दिल बनो, फिराक दिल वाले बनो, कि किसी की कमजोरी के लिए हमारे दिल में कोई स्थान ना रहे, हरेक के हम गुण देखते चले। इसीलिए बाबा ने कहा है हरेक को फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता देखता है जिसको भी देखता है। बाबा ने कहा तुम भी त्रिकालदर्शी होकर देखो। जब हम केवल वर्तमान देखते हैं किसी व्यक्ति का, हमें उसे कमी कमजोरी नजर आ जाती है, लेकिन अगर हम त्रिकालदर्शी होके उसका, अरे ये वही आत्मा है, भगवान की चुनी हुई आत्मा है, भगवान ने चुना है, कल पहले की तरह, तो बस ये आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता, जो अज्ञानी भी हैं, हर आत्मा को हम इस रीति से देखेंगे, कभी भी हमें उसकी कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी और मन में ईर्ष्या घृणा वैर भाव कभी पैदा नहीं होगा। वो कब होगा? और उसी चीजों से हम भारी हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा सबको ये सोचो, ये ईश्वर का बाबा का बच्चा है। ब्राह्मण परिवार का सबसे बड़ा पेपर आता है, उसके लिए यही सोचे कि ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है, भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता, भगवान ने चुना है। समय पर ये आत्मा के द्वारा कोई बहुत बड़ी प्रत्यक्षता होने वाली है। और इसी तरह अंतिम तत्व सूर्य अग्नि, अग्नि में क्या होता है? अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे जो बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग करो, हमारा योग की ऐसी ज्वाला हो, बस बाबा ने कहा रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए शांति की स्थिति में डूब करके चली जाए, दुखी आत्मा आए सुख की अनुभूति करके जाए, उसका रूप बदल जाए बिल्कुल। और वो तभी होगा जब हम ज्वालामुखी योग का हमने अनुभव किया हुआ होगा और उनको ये सम्मुख, जैसे ही हमारे सम्मुख आएंगे उनको एकदम ही उनका दुख सुख में अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी। तो बस आज मैं इतना ही ये संदेश देना चाहता हूँ जो बाबा के साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन से देखा और अंतिम दो दिनों में कर्मातीत अवस्था में, कि यदि हमारा भी ब्रह्मा बाबा से, और ये जनवरी मास है, हम सब का लक्ष्य है ऐसा संपूर्ण बनना, तो ब्रह्मा बाबा के जीवन से हम प्रेरणा लेकर के भी और अपने लिए ये दृढ़ संकल्प करें जो बाबा ने भी बोला, दृढ़ता जो है वो सफलता की चाबी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।